وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس سے پہلے انہی آیات میں سے پہلے ومن الناس بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, بس ان کو دنیا کی حسنا چاہیے. وما لہو فی الآخرة من خلاق, جو خسر دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے صرف دنیا مانگنا. مسلمان دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے, بلکہ اکثر مسلمان آخرت کو پہلے مانگتے ہیں تو تقدیم کرتے ہیں اور دنیا میں تاخیر کرتے ہیں. دونوں مانگنا چاہیے. دنیا کو چھوڑ دینا یہ بھی اس اصول کے خلاف ہے, اور بے نیازی برتنا یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسی بے نیازی جس سے آدمی خود پریشان ہو جائے. اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ صرف دنیا نہ مانگو لیکن دین کے ساتھ دنیا بھی مانگو. یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ بعض آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہم کو دنیا میں بہتری عنایت فرمائیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے. علامہ علوسی السید محمود بغدادی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں حسنہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کو سکھایا ہے. تم ہم سے یہ مانگو, یا اللہ ہم دنیا میں کہ ہم کو دنیا میں بھی حسنہ دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے. تو دنیا کی حسنہ یہ چیزیں ہیں, من جملہ یعنی اس کی شروحات یہ مفسرین فرما رہے ہیں. العافیت والکفاف, عافیت اور غیر محتاجی. کفاف کہتے ہیں غیر محتاجی کو. العافیت کیا ہے کہ بدن سلامت ہو مصیبتوں سے اور روح سلامت ہو معصیتوں سے گناہوں سے, یہ آدمی عافیت سے ہے. تو اگر بالفرض خدا نخواستہ گناہوں میں ابتلا ہے اور باقی سب عیش و عشرت ہے تو بھی عافیت سے نہیں ہے. جو بیچارے گناہ میں مبتلا ہیں, بہت سے گناہ ایسے ہیں جو روزانہ آدمی بلا وجہ کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ یا کوئی مزہ بھی روزانہ نہیں ملتا. جیسے داڑھی کٹانے یا منڈانے کا گناہ ہے, تصویر لٹکانے کا گناہ ہے, پائچے ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا گناہ, ایسے ہیں یہ کہ اس میں کوئی مزہ نہیں ہے اور گناہ الگ ہے. حالانکہ آدمی جو چلو ٹی وی دیکھنے میں, ڈرامہ دیکھنے میں, گانے سننے میں, بدنگاہی میں, سب میں مزہ ہے. یہ نہیں کہ جو ایسے ہو جاتے ہیں مرید ہو جاتے ہیں یا مرید بن کے پھر کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو گناہ سے مزہ نہیں آتا. مزہ ان کو بھی آتا ہے لیکن وہ خالق مزہ پر اپنے مزے کو فدا کرتے ہیں, فنا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو مزہ نہیں آتا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والوں کو بھی گناہ میں مزہ آتا ہے جناب, اللہ والوں کو بھی گناہ میں مزہ آتا ہے, لیکن وہ بتکلف اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کے مزے کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان کو رضا کا مزہ عطا فرماتا ہے, اپنی محبت کا مزہ عطا فرماتا ہے. اللہ والے یا صوفیہ یا علماء کھمبے نہیں ہوتے کہ ان کے اندر کوئی خواہش نہ ہو. خواہش سب کے اندر ہوتی ہے, کوئی روکتا ہے کوئی روکتا نہیں ہے, بالکل بے لگام بن جاتا ہے, جو چاہے کرتے رہو. یہ بتائیے کون. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والا وہ ہے جو خواہشات کو روکے. ایسا بھی ممکن ہے کہ کبھی وہ پھسل جائے خواہشات کے ریلے میں, وہ بھی بہہ پڑے, تو پھر اس کے بعد فوراً وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ آج مجھ سے نالائقی ہو گئی, نافرمانی ہو گئی, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. تو عافیت سے وہ ہے جس کا بدن مصیبتوں سے محفوظ ہے. نزلہ زکام مصیبت نہیں ہے, چکن گونیا کو مصیبت کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. جن کو ہو رہا ہے وہ دو دو تین تین مہینے تک پریشان رہتے ہیں. اس لیے مصیبت سے جس کا بدن محفوظ ہے اور گناہوں سے جس کی روح محفوظ ہے, یعنی ایسے کسی گناہ میں وہ مستقل مبتلا نہیں ہے, کبھی ہو جانا اور ہے, کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. تو یہ آدمی عافیت سے ہے. کفاف کیا ہے؟ غیر محتاجی, یعنی کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ آسان رزق اتنا عطا فرمائے کہ آسانی سے گزارا ہو جائے. نمبر دو, والمرأة الصالحة, نیک بیوی بھی حسنہ ہے. نیک بیوی مل جائے, کٹکھنی نہ ہو. بیویاں ہوتی ہیں لیکن بعض ایسے کٹکھنی ہوتی ہیں کہ زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. اس میں مردوں کا بھی قصور ہے, اپنی اصلاح نہیں کرواتے, خود بھی ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے رہتے ہیں. خود اگر آدمی بردبار بن جائے, عورتوں کی اصلاح کا طریقہ ایسا ہی ہے جیسے بچوں کی اصلاح کا طریقہ ہے. بچوں کے پیچھے ہر وقت لگے رہیں گے تو بچے زچ ہو جائیں گے, وہ ضدی ہو جائیں گے. ان کو آج جو عورتیں شروع سے ان کے مار پٹائی کرتی ہیں وہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں اور مار پروف ہو جاتے ہیں. ان کو جتنا مارو پھر کوئی اثر نہیں کرتا اور ڈھیٹ ہو جاتے. जाते हैं। तो इसी तरह अगर औरत को भी इस तरह डील किया जाएगा तो वो ढीठ होकर और दर्द सर बन जाएगी। उसको नरमी के साथ पेश आना चाहिए, बुर्दबारी के साथ, हर वक्त में लड़ाई झगड़ा ना करे बल्कि खामोशी अख्तियार करे, अपने काम में लगा रहे, नरमी से कभी नसीहत कर दे, नेक मजलिसों में लेकर जाए। हम ये कुछ नहीं करते और शिकायत करते कि हमारी घर वाली तो बहुत काबू में नहीं आती, बहुत तंग करती है, बहुत जबान दराज है, ऐसी है वैसी है। तो ये हमारी शिकायत बजा नहीं है, हमने उसकी इसलाह भी तो सही तरीके से नहीं की। हम लोग जब इतना सुनते हैं रात दिन तब भी कमजोर हैं। जो औरतें दीन के माहौल में बिल्कुल नहीं जाएंगी तो उनको दीन का क्या पता चलेगा, वो तो जो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। हम नहीं जानते हमें ईद में चार जोड़े चाहिए, तुम भीख मांग के लाओ या रिश्वत लेके आओ या टीटी दिखा के लाओ, हमें जोड़ा चाहिए। अगर उसके अंदर खौफ खुदा होगा तो उमर इब्न अब्दुल अजीज की बेटियां आके कह रही कि अब्बा हमारे पास जोड़ा नहीं बना और हमारी सहेलियों के पास जोड़ा बन गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज आम आदमी नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो खजाने से जितना चाहे ले सकते, लेकिन ये जानते थे कल को जवाब देना होगा। ये जो खजाने से लेने वाले हैं अभी इतना मुख्तसर ऐश कर रहे हैं, हमेशा हमेशा की जिंदगी में जवाब देना पड़ेगा दूसरों का जो हक खाया है। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खजांची के पास गए इस चीज से मुतासिर होकर कि मेरी बच्चियों के कपड़े नहीं बने, तो खजांची के पास गए और वहां जाके उससे कहा कि मुझे ऐसा करो, अभी तो महीना तो पूरा नहीं हुआ, 15 दिन बाकी है, मुझे पेशगी रकम दे दो, एडवांस जिसको कहते हैं, एडवांस मेरी जो तनख्वाह बनती है वो दे दो। अब बताइए ऐसा कभी मांग सकता है अमीरुल आज का सदर या वज़ीर आज़म, हमको मांगने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इस मांगने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि गुजारे लायक था और वो खत्म हो रहा था और कपड़े बनाने के पैसे नहीं थे। अब खजांची का जवाब सुनिए, वो भी अल्लाह वाले और बेखौफ, जानते थे कि अमीरुल मोमिनीन के अंदर खौफ खुदा है, मेरे इनकार करने से मुझे सूली नहीं चढ़ाया जाएगा, मुझे माजूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपका, जाहिर सी बात है आप मेरे बड़े हैं और आप अमीर हैं और मैं आपका मामूर हूं, लेकिन ये बताइए कि आप जो एडवांस मांग रहे हैं तो ये 15 दिन जो अभी बाकी हैं, तो आपको यकीन है कि 15 दिन आप जिंदा रहेंगे और इसकी नौकरी आप करेंगे, ये आपको यकीन है? अब इसका किसके पास जवाब है? कोई भी नेक आदमी तो नहीं कह सकता, कोई बदमाश तो कह सकता हाँ बेकार की बात, हालांकि तो फौरन बस जवाब बगैर दिए हुए वापस आ गए। वाकई इसका सवाल सही है कि हो सकता है मैं उससे पहले मर जाऊं तो मैं आवाम का पैसा लेकर मरूंगा। आवाम का पैसा लेकर वापस आ गए और बेटियों से कहा कि बेटियों तुम क्या चाहती हो, कि तुम्हारा अब्बा जहन्नम में जले, तुम कपड़े पहनो, तुम नए कपड़े पहनो और तुम्हारा अब्बा जहन्नम में जले, लिहाजा थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, जन्नत में कपड़े पहनाए जाएंगे, जन्नत में कपड़े पहनाए जाएंगे। ये इन हजरात की तरबियत थी, खुद भी मुशक्कत में गुजारा करते थे, घर वालों को भी जैसे तैसे गुजारा करवाते थे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि बस हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो, घर वालों की भी पूरी हो, और घर वालों को जब दीन नहीं होता तो फिर उनकी ख्वाहिश फरमाइशें होती हैं, जो पूरी ना हो तो आदमी परेशान होता है। अक्सर मर्द जो है रिश्वत लेते हैं इसी वजह से लेते हैं कि घर वाली जो है उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जब शादी भी करो नौजवानों को तो ऐसे घर से लाओ जो नेक घराने की हो, जो फैशनेबल होगी, उसके तो मेकअप शेकअप में ही 10,000 खर्च हो जाएगा, 20,000 किराया, 10-15,000-20,000 उसके मेकअप में, अब बचेगा क्या? और इसी तरह फिर उसके सारी ख्वाहिशात इसके अलावा भी ज्यादा होती हैं, घरेलू औरतें इससे मुस्तस्ना होती हैं। हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि कभी अपनी औरतों से बहिश्ती ज़ेवर में खिताब करते हुए कभी मर्द से उसकी तनख्वाह भी मत पूछो कि कितनी तनख्वाह है, बाहर से कहीं से कमा के आए तो ये मत पूछो कि क्या कमा के लाए, इतने अरसे में तुमने क्या कमाया, बस जो दे दे उस पर शुक्र अदा करो, तुम्हारा नान और नफका तो तुम्हें मिल रहा है, लिहाजा इसी पर शुक्र अदा करो। जो नेक औरतें होती हैं उनकी नज़र शोहर के जेब पर नहीं होती, बल्कि वो चाहती हैं बस शोहर का साया मेरे सर पर रहे, और अक्सर जो नेक औरतें होती हैं वो चाहती हैं मैं पहले मर जाऊं और शोहर, ताकि मैं बेवा ना हूं, पहले मर जाऊं ताकि शोहर के सामने शोहर मेरा जनाजा उठाए। ये नेक औरतों की अलामत है कि वो बाजार के चक्कर नहीं लगाती और शोहर को शोहर के नाक में दम नहीं करती। अल्लाह ताला ऐसी बीवियां हमें अता फरमाए और हमें, और जिसको नहीं है वो इसलाह करे, इसलाह करते करते फजाइल आमाल, फजाइल सदकात, ये चीजें अगर पढ़ें औरतें, इसलाह खवातीन और दीनी मजलिसों में आना जाना करें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं कि ऐसे हालात ना हो सकते हों, सबके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते, धुंधे ना तराश की तरह उसको छोड़ दिया, बस वो ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। तो अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी भी हसना है, तो हसना अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, जो हसना मांगेगा उसको नेक बीवी मिलेगी। अल औलादुल अबरार, औलाद भी नेक होगी, फरमा बरदार, अल्लाह की भी फरमा बरदार और हमारी भी फरमा बरदार। आज हम चाहते हैं कि हमारी फरमा बरदार तो हो, अल्लाह की फरमा बरदार हो या ना हो, फजर की नमाज पढ़े या ना पढ़े, दाढ़ी रखे या ना रखे, कोई दीन का काम करे, कलमा नमाज आता है या नहीं आता, बस हमारी फरमा बरदारी करे, ये अधूरी बात है। हम जिस तरह अपनी फरमा बरदारी चाहते हैं उसको अल्लाह का फरमा बरदार बनाए, क्योंकि अगर ना फरमान रहा तो आज खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बच्चे को तो वो तो अपने हाल में होता है, वालदेन रो रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो जब हम इतनी छोटी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, कल जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे अपनी औलाद के लिए। उसको नमाजी ना बनाना, नेक ना बनाने की फिक्र करना, ये उसको जहन्नम की तरफ धकेलना है। लिहाजा हर वक्त ये फिक्र हो कि उसको बजाय ठीक है रोटी कपड़ा देना, बोटी रोटी और लंगोटी, ये सब फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा फिक्र दीन की होनी चाहिए कि मेरा बच्चा 11-12 साल का हो रहा है, इसको फजर की नमाज जमात से पढ़ाने के लिए लेके जाना चाहिए, बच्ची मेरी 9 साल की हो रही है, अब इसको पर्दा कराना चाहिए, इन लोगों को दीनी तालीम देनी चाहिए ताकि कल आखिरत हमारी बने, वरना दुनिया तो बन जाती है, दुनिया तो यहूदियों के पास बहुत है, नसारा के पास बहुत है, लेकिन तो कितनी दिन, कितने दिनों की, कुलू व तमत्ताउ कलीलन, थोड़े दिन है, खा पी लो, बरत लो, इन्नकुम मुजरिमून, तुम लोग मुजरिम लोग हो, और अन करीब फिर तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो अभी सोच से भी बाला तर है। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन्हुम। डॉक्टर दलही साहब आरफी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि जहन्नम के तो तज़किरे से भी डर लगता है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जहन्नम नहीं बनाई, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, जैसे शरीफों के लिए जेल नहीं होती, लेकिन अगर शरीफ भी कोई ऐसा मसला कर दे, कत्ल कर दे, कोई गुना ऐसा करे जुर्म, तो उसको भी जाना पड़ता है। तो असल में तो कलमा तैयबा पढ़ने वाला अल्लाह वाला होता है, उसका और जहन्नम का क्या ताल्लुक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, जैसा कि आज उमूमी तौर पर मुसलमानों में रुझान है नमाज रोजे से बिल्कुल दूरी और गुनाहों से कुर्बत, लिहाजा ये रास्ता कौन सा है, ये नाफरमानों का रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जो अल्लाह के गैर हैं। इसीलिए फरमाया गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम, हमें मग़ज़ूब लोगों से ही बचाइए जिन पर आपका गज़ब नाज़िल हुआ, और ज़ालिमीन के रास्ते से भी हमें बचाइए, हमें मुनाम अलैहिम का रास्ता अता फरमाइए। अल्लाह ताला हमें इस दुआ को सही से पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।